नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ वार्ता करेंगी। गाजा में युद्ध समाप्त करने के शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मिस्र के शर्मल शेख में। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में BWF विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप गुवाहाटी में आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ वार्ता करेंगी। वे भारत की दो दिन की यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सुश्री आनंद की ये यात्रा द्विपक्षीय तंत्रों को मजबूत कर तथा आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाकर दोनों देशों के संबंधों को गति देगी। कनाडा की विदेश मंत्री की भारत यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक के बाद हो रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आपसी संबंध खराब हुए तो काबुल के पास और भी विकल्प हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ वर्ग हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर श्री मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा।
पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासुन है वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासुन के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। मुज़ाकरा और मुफाहमा से सब के सब मुश्किल हल करना चाहता है, और अगर और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है।
अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में हमले की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तालिबान ने इसे पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमले पर जवाबी कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। वहीं तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है। तनाव के कारण तोरखम और चमन में प्रमुख सीमा चौकियां बंद कर दी गई हैं। इस बीच सऊदी अरब और कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए तनाव सुलझाने का आग्रह किया है। कैमरून में विश्लेषकों ने राष्ट्रपति पॉल बिया की जीत की भविष्यवाणी की है। देश में कल राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। अफ्रीका के सबसे बुजुर्ग नेता का शासन 7 साल और बढ़ सकता है। वर्तमान में 92 वर्ष के पॉल बिया का कार्यकाल समाप्त होने तक उनकी उम्र 99 वर्ष हो जाएगी। वे कैमरून के पहले राष्ट्रपति अहमदउ अहिदजो के इस्तीफे के बाद 1982 में पहली बार सत्ता में आए थे और तब से देश पर शासन कर रहे हैं। बिया को इसके बाद के 7 चुनावों में विजेता घोषित किया गया। 1960 में स्वतंत्रता के बाद से कैमरून में केवल 2 नेताओं को सत्ता मिली है। हालांकि बिया का स्वास्थ्य अक्सर अटकलों का विषय रहा है, क्योंकि वे अपना अधिकांश समय यूरोप में बिताते हैं और दिन प्रतिदिन का शासन पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों और परिवार के सदस्यों पर छोड़ देते हैं। दक्षिण चीन सागर में स्पार्टली द्वीप के पास चीनी तटरक्षक जहाज और फिलीपींस के जहाज के टकराने से तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस ने चीनी जहाज पर जानबूझकर टकराने का आरोप लगाया है। उधर चीन ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि फिलीपींस के जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अवैध रूप से चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश करते हुए टक्कर का कारण बना। चीन ने अपनी कार्रवाई को वैध बताया है। चीन इस क्षेत्र में नियंत्रण का दावा करता रहा है। भारत सहित गैर यूरोपीय संघ देशों के यात्रियों को अब यूरोपीय संघ की नई प्रवेश निकास प्रणाली EES का पालन करना होगा। कल से लागू इस प्रणाली के तहत आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिकस्टनटाइन सहित शेंगेन जोन के देशों में प्रवेश करते समय फिंगरप्रिंट, चेहरे का स्कैन और पासपोर्ट स्कैन अनिवार्य है। आयरलैंड और साइप्रस इससे मुक्त हैं। EES का उद्देश्य सुरक्षा कड़ी करना और मैनुअल पासपोर्ट स्टैंपिंग की जगह डिजिटल रिकॉर्ड स्थापित करना है। डोवर, फोकस्टोन स्थित यूरोटनल और यूरोस्टार जैसे ब्रिटेन प्रस्थान बिंदुओं पर यात्रियों के ब्रिटेन छोड़ने से पहले जांच की जाएगी। इस प्रणाली को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। गाजा में युद्ध समाप्त करने के शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेश भी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्य रूप से गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय शांति प्रयासों को बढ़ावा देने और पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने पर बातचीत होगी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शांति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काहिरा पहुँचने की जानकारी दी। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और हमास के बीच शांति योजना के पहले चरण के समझौते का स्वागत किया था। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। ये दिवस लोगों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आपदा शमन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपदाओं के बारे में जागरूकता लाने और इसकी रोकथाम के लिए वर्ष 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत की थी। भारत सरकार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सूत्री एजेंडे के अनुरूप आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समावेशी और सक्रिय कार्यों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय आवास परियोजना का अगला चरण कल श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल समुदाय के 2000 लाभार्थियों को पात्रता दस्तावेजों के औपचारिक हस्तांतरण के साथ शुरू हुआ। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका की देखरेख में बंदरवेला पब्लिक ग्राउंड्स में आयोजित किया गया। ये घर भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का हिस्सा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में सुदूरवर्ती क्षेत्र की यात्रा के दौरान की थी। राष्ट्रपति दिसनायका ने श्रीलंका को सहयोग देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद दिया। अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के द्वीपीय शहर के एक रेस्टोरेंट में कल गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। ब्यूफोर्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा है कि वो घटना की जांच कर रहा है। शेरिफ कार्यालय ने कहा कि गोलीबारी के समय वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद आज से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना की 120 सैनिकों की टुकड़ी इस वर्ष वार्षिक अभ्यास में भाग लेगी। सैन्य अभ्यास 26 अक्टूबर को संपन्न होगा। भारत कल से नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में सैनिक भेजने वाले देशों के सेना प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 3 दिन के सम्मेलन में कुल 32 देश शामिल होंगे। BWF विश्व जूनियर व्यक्तिगत बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से असम के गुवाहाटी में शुरू हो गई। भारत वर्ष 2008 के बाद दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और रक्षिता रामराज को शुरुआती दौर में बाई मिली है, इसलिए वे सीधे दूसरे दौर में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान और सूर्याक्ष रावत को भी पहले दौर में बाई मिली है। मिक्स डबल्स में भव्य छाबड़ा और विशाखा टोप्पो तथा लालराम सांगासी और तारिणी सूरी की जोड़ियां भारत का नेतृत्व करेंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 197 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ वार्ता करेंगी। गाजा में युद्ध समाप्त करने के शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में BWF विश्व जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप गुवाहाटी में आज से शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।